नमस्कार दोस्तों, आदाब। मैं आपका दोस्त ईशान जैदी फिर से हाजिर हुआ हूँ आपके लिए एक नई ताज़ा तरीन कहानी लेकर। कहानी का शीर्षक है सीढ़ियों से उतरता गम, और इसको लिखा है श्री मुनाजिर आशिक जी ने। तो आइए शुरू करते हैं आज की नई कहानी, सीढ़ियों से उतरता गम। रेलवे प्लेटफॉर्म के एक बेंच पर बैठा मैं पंजाब मेल का इंतजार कर रहा हूँ। रात के 10 बज चुके हैं। अभी अभी अनाउंसमेंट हुआ है कि ट्रेन 1 घंटा 25 मिनट लेट है। ट्रेन जब लेट होती है इंतजार में बैठे रहना मुझे बहुत खलता है। कई बार उठकर चहलकदमी कर चुका हूँ, 2 सिगरेट भी पी चुका हूँ। ज्यादा भीड़ नहीं है। ऐसी स्थिति में आसपास के चेहरों को देखना, उनके क्रियाकलाप को परखना और अपनी सोच के हिसाब से गलत सही फैसला करना बहुत रुचिकर होता है। बेंच की दूसरी तरफ एक नौजवान जोड़ा आकर बैठ गया है। उन्होंने बक्स और बिस्तर को बेंच के ऊपर ही रख लिया है। उन्हें देखते समय अचानक मेरी नजर नौजवान से टकरा गई। मैं अपनी निगाहें हटाकर उन्हें कनखियों से देखने लगता हूं। नौजवान विद्यार्थी लगता है। टेरिकॉट का शर्ट पैंट और हाथ का बुना हुआ स्वेटर पहने हुए है। लड़की भी 16-17 वर्ष से ज्यादा की नहीं मालूम होती। फूलदार साड़ी, ब्लाउज और गुलाबी रंग का कोट पहने हुए है। कोट के बटन खुले हुए हैं। मैं दोनों को भरपूर ढंग से देख रहा हूं। लड़की सांवले रंग की है, मगर देखने की इच्छा होती है। चेहरे पर गांव की लड़कियों की तरह मासूमियत और शहर की लड़कियों की तरह चालाकी मिली जुली शक्ल में है। अचानक लड़की लड़के की गोद में सिर रख देती है। मुझे उनका इस तरह खुले प्लेटफॉर्म पर सटक कर बैठना अजीब सा लग रहा है। मैं आसपास खड़े हुए लोगों की तरफ देखने लगता हूं। एक पुलिस का सिपाही बीड़ी पीता हुआ लड़की को देखकर अपनी मूंछें ऐंठ रहा है। बेंच की दाईं तरफ एक छोकरा मूंगफली बेच रहा है, मगर वह सिर्फ मूंगफली बेचने की फिक्र में है। उसकी नजर उन दोनों की ओर नहीं है। बेंच के सामने कुछ दूरी पर 2 आदमी जोर जोर से बातें कर रहे हैं। आखिर आसाम का इलेक्शन भी करीब आ गया। राजीव गांधी का सितारा बुलंदी पर है। इंदिरा जी की रूह इनकी निगरानी कर रही है। रूह निगरानी कर रही है? क्या कह रहे हो? ये तो मानोगे कि वे राजनीति की महान देवी थी, इसमें क्या शक है। राजीव जी ने भी हिंदुस्तान का धड़कता दिल अपने कब्जे में कर लिया है। ये झुककर और भी महान बन गए। पंजाब से गुजरात तक इनकी सफलता में आखिर कौन सा जादू था? मेरी बात समझ रहे हो? हाँ ठीक कहते हो, लेकिन ये आसाम का इलेक्शन इतनी जल्दी क्यों हो रहा है? अभी फरवरी में इलेक्शन। शायद दोनों जोर जोर से बोलने के आदि लगते हैं, लेकिन उसकी नजरें भी लड़की की तरफ ही हैं। कुछ दूर पर A.H. व्हीलर का बुक स्टॉल है। वहां 4-5 आदमी किताब और पत्रिकाएं उलट पलट रहे हैं, मगर वे भी रह रहकर उसी बेंच की ओर देख लेते हैं। मैं महसूस करता हूं कि 10-15 आदमियों की आंखें उसी तरफ लगी हुई हैं। 3-4 आदमियों को बेंच के आसपास टहलते हुए देख रहा हूं। मैं फिर इन दोनों की तरफ देखता हूं, किसी बात पर खुलकर हंस रहे हैं। अचानक लड़के ने लड़की की चुटकी ली है। अब लड़की ने अपनी बाहें लड़के के गले में डालकर अपने सिर को उसके कंधे पर रख दिया है। दोनों अपने आसपास के लोगों से बेखबर मालूम होते हैं। मुझे उन पर गुस्सा भी आ रहा है और इस दृश्य को देखना भी चाहता हूं। सिगरेट सुलगाकर प्लेटफॉर्म पर चहलकदमी करता हुआ काफी आगे निकल जाता हूं। पीने का पानी की टंकी देखकर प्यास सी लगती है, मगर एक ही घूंट पीकर रह जाता हूं क्योंकि पानी बहुत ठंडा है। बुक स्टॉल पर जाकर एक पत्रिका खरीदता हूं, फिर अपनी जगह बैठने के ख्याल से बेंच की ओर बढ़ता हूं। करीब पहुंचकर सोचता हूं, बैठने से क्या फायदा। दोनों आदमी अब भी जोर जोर से बातें किए जा रहे हैं। तथाकथित खालिस्तानी लीडर जगजीत सिंह चौहान का एक और बयान आया है। वो क्या? कि राजीव गांधी का नाम हिट लिस्ट में है। लकीर को पीट रहा है, राजीव ब्रिटेन का दौरा करके वापस आ चुके हैं। अरे हाँ, बिहार के एक एमपी की गिरफ्तारी का क्या चक्कर था? जिस्म बेचने वाली औरतों के साथ घुलने मिलने पर ऐसी ही अफवाह फैलती है। मैं आहिस्ता आहिस्ता प्लेटफॉर्म पर आगे बढ़ जाता हूँ, लेटर बॉक्स से भी आगे निकल जाता हूँ। जब लौटने लगता हूँ तो दीवार के करीब एक गठरी से कराहने की आवाज़ सुनता हूँ। मैं ठिठक कर रह जाता हूँ, करीब जाना चाहता हूँ, और जैसे ही गठरी के पास पहुँचता हूँ कि वहाँ सूखी खाल में मढ़ी हुई एक औरत नंग धड़ंग मैली और फटी चादर में लिपटी कराह रही है। पास में एक टूटा हुआ कटोरा और एक गंदा कपड़ा रखा हुआ है। बगल में एक मरियल सा कुत्ता बैठा ऊंग रहा है। मेरा रोमांटिक मूड चौपट हो जाता है। मैं सिगरेट का कश लेता हुआ बुक स्टॉल की ओर लौटता हूं। वहां पुलिस का सिपाही किसी फिल्मी पत्रिका के पन्ने उलट रहा है। मैं उससे कहता हूं, वहां उस दीवार के पास एक औरत पड़ी है, शायद बीमार है, सर्दी से मर जाएगी, उसे यहां से अस्पताल भिजवा दिया जाए। मालूम है वो औरत नहीं, एक लाश है जो पिछले 2 दिन से पड़ी हुई है। सिपाही बीड़ी का कश लेते हुए उस लड़की को घूरने लगता है। लेकिन मैंने उसकी कराहने की आवाज सुनी है, तो मैं क्या करूं, आज नहीं तो कल जरूर मर जाएगी। मुझे सिपाही के जवाब से दुख पहुंचता है। मैं सोचता हूं कि स्टेशन मास्टर को खबर कर देनी चाहिए, शायद उस मरती हुई औरत के लिए कुछ करे। उसी समय ट्रेन आने की खबर मिली। तब ख्याल आया कि चाय पी लेनी चाहिए, हो सकता है कि ट्रेन में काफी भीड़ हो और रात भर जागना पड़े, मैंने रिजर्वेशन नहीं कराया है। चाय पीते समय मैं पुलिस वालों के बारे में सोचता हूं। इन लोगों में इंसानियत और हमदर्दी नाम की कोई चीज नहीं है। सामने पान वाले को देखकर मैं सोचता हूं, उस मरने वाली औरत के चक्कर में मैं पान खाना ही भूल गया था। तभी प्लेटफॉर्म पर ट्रेन आने की हलचल शुरू हो गई। ट्रेन में ज्यादा भीड़ नहीं है। मैं अपने बेंच के सामने वाले कंपार्टमेंट में प्लेटफॉर्म की तरफ वाली खिड़की से अंदर जाकर बैठ गया हूं। फिर सोचता हूं कि यहां ट्रेन 5 मिनट रुकती है, स्टेशन मास्टर को खबर करने में 2-3 मिनट लगेंगे, लेकिन उसी समय वो लड़का और लड़की मेरे सामने वाली बर्थ पर बैठ जाते हैं। दोनों की सांसें तेज चल रही हैं। थक्कम पेल में लड़की की साड़ी भी बेतरतीब हो गई है। मैं लड़की के सीने के उतार चढ़ाव को देखने लगता हूं और सोचता हूं कि इतनी रात गए अपनी सीट और अटैची छोड़कर जाना मुनासिब नहीं है। तो दोस्तों, आज की थी ये कहानी सीढ़ियों से उतरता गम, जिसको लिखा था श्री मुनाजिर आशिक जी ने। दोस्तों, जैसा कि मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि आप अपने सुझाव मुझ तक जरूर पहुंचाएं, अपने मैसेजेस मुझ तक पहुंचाएं, इससे मुझे मदद मिलेगी कि मैं और आपके लिए अच्छी कहानियां लेकर आऊं। अब तक कम से कम 10 कहानियां रिकॉर्ड हो चुकी हैं और मैं उम्मीद करता हूं आपको सारी कहानियां काफी पसंद आई होंगी। हिंदी कहानियों को मैं थोड़े समय के लिए विराम लगाऊंगा और आने वाले दिनों में कुछ अंग्रेजी कहानियां आपके सामने लेके आऊंगा, जो कि इसी श्रृंखला की एक दूसरी कड़ी होगी। अभी हमारे जखीरे में बहुत सारी चीजें बाकी हैं। मैं उम्मीद करता हूं आप रेगुलरली हमारे इस पॉडकास्ट पे अपने सुझाव देंगे, यहां पे आएंगे और कहानियों का लुत्फ उठाएंगे। तो दोस्तों, आप सबसे फिर से मिलने की तमन्ना रखता हूं। आपका दोस्त ईशान जैदी फिर से हाजिर होऊंगा एक नए सेगमेंट में, एक नई कहानी लेकर, एक नई भाषा के साथ। तब तक के लिए आप सबको अलविदा ईशान जैदी की तरफ से, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खुश होंगे, सेहतमंद होंगे इसी इन्हीं दुआओं के साथ आज का ये एपिसोड समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, शब्बा खैर, नमस्कार।